तकफीरी आतंकवाद।
श्रोताओं, तकफीरी आतंकवाद की एक अन्य कड़ी के साथ स्वाति और मोहम्मद अली कुम्मी हाजिर हैं। आशा है पसंद करेंगे।
इस कार्यक्रम श्रृंखला में हम तकफीरी विचारधारा या प्रक्रिया के वास्तविक चेहरे को सामने लाने का इरादा रखते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, किंतु वो सबसे नृशंस अपराधों को इस्लाम से जोड़ती है। हम इस कार्यक्रम श्रृंखला में ये बताना चाहते हैं कि पश्चिमी सरकारों और उनके क्षेत्रीय घटकों का तकफीरी आतंकवाद के नृशंस अपराधों को इस्लाम से जोड़ने के पीछे लक्ष्य ये है कि वे ईश्वरीय धर्म इस्लाम की छवि को ख़राब करना चाहते हैं, कि जो दुनिया में शांति और न्याय का समर्थक धर्म है।
दूसरे ईश्वरीय धर्मों की तरह इस्लाम में भी पैगंबर इस्लाम और उनके उत्तराधिकारियों के स्वर्गवास के बाद लोगों के सामने ऐसी बातें पेश की गई जो इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के स्वर्गवास के वक्त उनके दामाद और योग्य उत्तराधिकारी हजरत अली अलैहि सलाम कुछ निष्ठावान अनुयायियों के साथ पैगंबर इस्लाम के अंतिम संस्कार अंजाम देने में व्यस्त थे, तो दूसरी ओर पैगंबर इस्लाम के कुछ अनुयायी, जिसमें अंसार और मुहाजिर दोनों शामिल हैं, मदीना नगर से बाहर सकीफा बनी सायदा नामक स्थान पर पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारी के चयन के लिए इकट्ठा थे। यहाँ इस बिंदु का उल्लेख जरूरी है कि मुहाजिर वे लोग थे जो मक्का से मदीना पलायन कर गए थे और अंसार वे थे जिन्होंने पलायन करने वालों को अपने यहाँ पनाह दी थी। ये लोग ऐसी हालत में सकीफा बनी सायदा में इकट्ठा हुए थे कि खुद पैगंबर इस्लाम ने अपने अंतिम हज से लौटते वक्त गदीरे खुम नामक स्थान पर 125,000 हाजियों के सामने हजरत अली अलैहि सलाम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
पिछले कार्यक्रम में हमने आपको गदीरे खुम और सकीफा बनी सायदा में घटी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया था। अब आपको पैगंबर इस्लाम के स्वर्गवास के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के आचरण के बारे में बताने जा रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तीनों खलीफाओं और ख़ुद अपनी खिलाफत के दौर में आचरण शिया सुन्नी सहित सारे मुसलमानों के लिए आदर्श बन सकता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इस्लाम के उदय के समय से लेकर तीनों खलीफाओं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान से लेकर ख़ुद उनकी खिलाफत तक का व्यवहार इस बात के लिए स्पष्ट दलील है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों के बीच आपस में फूट और दुश्मनी को रोकना चाहते हैं। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का विभिन्न अवसरों पर तीनों खलीफाओं को परामर्श देना, न्यायिक मामलों में भाग लेना, खलीफाओं के दौर में जंगों में शामिल होना, तीसरे खलीफा के दौर में असंतुष्टों को समझाना और तीसरे खलीफा की जान की रक्षा के लिए इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तैनात करना ताकि वे असंतुष्टों को खलीफा के आवास वाली इमारत में प्रवेश करने से रोकें। ये सब इस बात की दलील हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों के बीच एकता चाहते थे।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा जनता के मार्गदर्शन का ईश्वरीय दायित्व संभालने वाले बाकी इमामों का भी यही आचरण था। ये इमाम अपने दृष्टिकोणों को बयान करने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश करते थे कि मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा न हो पाए। हालांकि इन इमामों के दृष्टिकोण और मुसलमानों के दूसरे धर्मगुरुओं के दृष्टिकोण में मूल अंतर होता था। इस्लामी इतिहास इस बात का गवाह है कि इन इमामों ने कभी भी अपनी बातचीत में अपने विरोधियों के लिए कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। पूरे इस्लामी इतिहास में मुसलमानों के बीच एकता में विश्वास रखने वाले अच्छे धर्मगुरु भी इसी आचरण को अपनाते रहे हैं। इन सभी कोशिशों के बावजूद मुसलमान समाजों में ऐसी विचारधारा वजूद में आई जो दूसरे इस्लामी मतों को काफिर कहकर इस्लामी मतों के बीच मतभेद को हवा देती रही।
अलबत्ता मुसलमानों के बीच फूट डालने और उन्हें बांटने में ईसाइयों, खास तौर पर पश्चिमी सरकारों और उनमें सबसे आगे ब्रिटेन की सरकार के षड्यंत्र का भी हाथ रहा है, जिसके बारे में बाद के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बात के मद्देनज़र के ISIL, अलकायदा और जिबहतुल नुसरा जैसे तकफीरी आतंकवादी गुट खुद को सुन्नी संप्रदाय का कहते हैं और इन तकफीरी गुटों का स्रोत वहावी पंथ है, इस कार्यक्रम में सुन्नी संप्रदाय के बीच तकफीरी प्रक्रिया की जड़ का पता लगाने की कोशिश करेंगे।
अहमद बिन हम्बल को सलफी विचारधारा का जनक माना जाता है। अहमद बिन हम्बल सुन्नी संप्रदाय के धर्मगुरुओं में हैं, जिनके नाम पर हम्बली मत वजूद में आया। सुन्नी संप्रदाय की चार मुख्य शाखाएं हैं, हनफी, हम्बली, शाफेई और मालिकी। समय गुजरने के साथ साथ इन मतों की भी उपशाखाएं वजूद में आई और हर एक की अपनी अपनी आस्था है। सवाल यह उठता है कि अहमद बिन हम्बल कौन है। अहमद बिन हम्बल बिन हिलाल शेबानी मरवी का 164 हिजरी कमरी में बगदाद शहर में जन्म हुआ। उनके पिता सिपाही थे। अहमद बिन हम्बल के पैदा होने से पहले ही उनके पिता खुरासान के उपनगरीय इलाके मर्व में इस दुनिया से जा चुके थे और उनकी माँ गर्भावस्था में बगदाद चली गई थी, जहाँ अहमद बिन हम्बल का जन्म हुआ। अहमद बिन हम्बल ने 16 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम के कथनों का ज्ञान हासिल करना शुरू किया।
उसके बाद अहमद बिन हम्बल पैगंबर इस्लाम के कथनों का ज्ञान हासिल करने में व्यस्त रहे। पैगंबर इस्लाम के कथन को हदीस कहा जाता है। शुरू में अहमद बिन हम्बल बगदाद में हदीसों का ज्ञान हासिल करते रहे, जो उस समय ज्ञान विज्ञान के फलने फूलने का स्थान था। वो बगदाद में पैगंबर इस्लाम के कथनों को इकट्ठा करते रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से बसरा, कूफा, हिजाज, यमन और सीरिया का सफ़र किया। यह शहर उन दिनों मुहद्दिसों अर्थात पैगंबर इस्लाम के कथनों का ज्ञान रखने वालों का केंद्र समझे जाते थे। इन शहरों में उन्होंने बहुत से मुहद्दिसों से हदीसों का ज्ञान हासिल किया, जिनमें वकी और इसहाक बिन राहविया उल्लेखनीय हैं। अहमद बिन हम्बल ने 40 साल की उम्र तक पैगंबर इस्लाम के कथनों का वर्णन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने पैगंबर इस्लाम के कथनों का वर्णन शुरू किया।
अहमद बिन हम्बल की सबसे मशहूर किताब का नाम मुस्नद है, जो 30,000 हदीसों का संकलन है। अहमद बिन हम्बल के अनुसार उन्होंने 75,000 हदीसों में से 30,000 हदीसें चुनकर इस किताब में संकलित की हैं। सुन्नी संप्रदाय के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने पूरे इतिहास में मुस्नद को हमेशा उद्धृत किया है। इस किताब की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों की प्रशंसा में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं, जबकि सुन्नी संप्रदाय में हदीसों को संकलित करने वाले बहुत से लोगों ने इन हदीसों का संकलित नहीं किया है। एक रोचक बिंदु यह है कि मुस्नद में ऐसी हदीसों का उल्लेख है जिसकी शिया संप्रदाय के धर्मगुरु भी पुष्टि करते हैं।
अहमद बिन हम्बल हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुलफाए राशिदीन में मानते हैं और उनके हवाले से बहुत सी हदीसें पेश की हैं। अहमद बिन हम्बल के विचारों और किताबों को पढ़ने से पता चलता है कि धर्मशास्त्री से ज़्यादा वो मुहद्दिस हैं। उन्होंने कभी भी खुद को धर्मशास्त्री कहलवाना पसंद नहीं किया। धार्मिक विषयों में वो पैगंबर इस्लाम के आचरण और उनके अनुयायियों के फतवों का अनुसरण करते थे। इसी प्रकार वो उन चीज़ों के बारे में किसी प्रकार की राय नहीं देते थे जिसे इस्लाम ने हलाल और वर्जित घोषित किया है। बताया जाता है कि एक दिन एक व्यक्ति ने अहमद बिन हम्बल से हलाल और वर्जित आदेश के बारे में उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा, ईश्वर आपका भला करे, किसी और से पूछिए। उस व्यक्ति ने फिर उनसे अपना सवाल दोहराया तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया।
अहमद बिन हम्बल की धर्मशास्त्र के विषय पर कोई किताब नहीं है, बल्कि इस संदर्भ में उनके कुछ विचार हैं जिसे अबू बकर खिलाल नामक उनके एक शिष्य ने संकलित किया है। यही कारण है कि विभिन्न दौर में अहमद बिन हम्बल के अनुयायियों की संख्या धर्मशास्त्र के दूसरे मतों की तुलना में कम रही। चौथी हिजरी कमरी के दूसरे अर्ध तक हम्बली मत दूसरे इस्लामी मतों के जितना नहीं फैला था। बाद की शताब्दियों में यमन धीरे धीरे सुन्नी संप्रदाय के तीन अन्य मतों की पंक्ति में शामिल हुआ। इस वक्त भी इस मत के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम है।
احمد بن حنبل پیغمبر اسلام کے کتھنوں، ان کے فیصلوں اور پیغمبر اسلام کے انویائیوں کے فتووں کے آدھار پر فتویٰ دیتے تھے۔ وہ مالک اور اوزائی جیسے پرسدھ دھرم گروؤں سے اپنے فتوے کی پشٹی کراتے تھے۔ اسی پرکار وہ پیغمبر اسلام کے انویائیوں کا انوسرن کرنے والوں کی باتوں کو اپنے فتوے کا آدھار بناتے تھے۔ احمد بن حنبل پوروانومان سے دور رہتے تھے، صرف ان چیزوں کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے جو ویوہارک روپ سے گزر چکی ہوتی تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ فتویٰ ضرورت پڑنے پر دینا چاہیے۔ حالانکہ احمد بن حنبل کے فقہ کو بہت کٹھن مانا جاتا ہے، لیکن پھر اس میں ترک کا پربھاؤ دکھائی دیتا ہے۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ احمد بن حنبل کے مت کی آستھا سمبندی وشیشتا وہ چیز ہے جس نے سلفیوں کو اس بات کے لیے پریرت کیا کہ وہ خود کو احمد بن حنبل کا انوسرن کرتا کہلوائیں۔
حنبلی مت میں حدیثوں کے ودیت روپ پر بل دیا جانا وہ وشیشتا ہے جس سے سلفیوں کو حنبلی مت سے خود کو جوڑنے کا افسر ملا۔ سلفی دھارمک معاملوں میں دھرم گروؤں کا انوسرن نہیں کرتے، یہی کارن ہے کہ سلفیوں کے پاس خود کو احمد بن حنبل سے جوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بارے میں اگلے کاریکرم میں وستار سے چرچا کریں گے۔